بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت ایوم انواع سے کریں گے۔ آج آپ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 13، 14، 15 اور 16 آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری رفیع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر منوش کا کرم پتر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور پرلے کے دن اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی بھانتی پرستت کریں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ جو کوئی مارگ درشن پراپت کرتا ہے वो अपने लाभ के लिए करता है और जो पथभ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें। और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुख भोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। आज शनिवार है, दे माह की 11, जमादुल उला की 27 और जनवरी की पहली तारीख। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की बरसी पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और सभा के अंत में हम आपको नौ वर्ष पर विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھ سماچاروں کا سارانش۔ ورشٹھ نیتا کا کہنا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے خون کی برکت سے آج پرتیرودھ کا دھڑا زیادہ آشانوت ہے۔ ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے کہ جنرل سلیمانی کو شہید کرنے کا مقصد پرتیرودھ کو کمزور کرنا تھا۔ अरुणाचल मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया है। और अब आप मरियम मेहरदादी और सैयद अख्तर से विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना है कि शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के खून की बरकत से आज प्रतिरोध का धड़ा ज्यादा आशान्वित है। शनिवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई से शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के परिजनों ने मुलाकात की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि दुश्मन यह समझता था कि जनरल कासिम सुलेमानी, अबू महदी मुहंदिस और उनके साथियों को शहीद करके काम तमाम हो जाएगा, लेकिन आज इन प्रिय शहीदों और मजलूमों के खून की बरकत से अमरीका अफगानिस्तान से फरार हो गया और इराक से निकलने का ढोंग रचने और सैन्य उपस्थिति के बिना परामर्श भूमिका का ऐलान करने पर मजबूर है, लेकिन इराकी भाइयों को बहुत ही होशियारी और समझदारी से इस मामले पर नजर रखनी चाहिए। सुप्रीम लीडर का कहना था कि यमन में प्रतिरोध का मोर्चा आगे बढ़ रहा है, सीरिया में दुश्मन धराशायी हो गया है और वो भविष्य की ओर से निराश हो चुका है। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना था कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र में प्रतिरोध और साम्राज्यवादी विरोधी मोर्चा दो साल पहले की तुलना में आज ज्यादा उत्साहित, आशान्वित और ज्यादा ताजगी के साथ काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम लीडर ने इस बात की ओर संकेत करते हुए कि क्षेत्र और इस्लामी जगत के युवाओं में जनरल कासिम सुलेमानी एक नायक और आदर्श में परिवर्तित हो चुके हैं, कहा कि आज जनरल कासिम सुलेमानी हमारे क्षेत्र में आशा, आत्मविश्वास, दूरदर्शिता का प्रतीक और प्रतिरोध तथा कामयाबी का रहस्य हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई का कहना था कि कुछ लोगों का सही कहना है कि शहीद सुलेमानी दुश्मनों के लिए जनरल सुलेमानी से ज्यादा खतरनाक हैं। اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو ہمیشہ جیوت اور باقی رہنے والی ایک واستوکتا قرار دیا اور کہا کہ ٹرمپ اور اس کے جیسے ان کے ہتھیارے اتہاس کے کچرے کی پیٹی میں کے حوالے ہو جائیں گے اور دنیا ان کو بھول جائے گی، لیکن اس سے پہلے انہیں ان سب اپرادھوں کا حساب کتاب چکانا ہوگا جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے ہیں۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے سوشل میڈیا سے جنرل قاسم سلیمانی کو ہٹانے کی سامراجوادیوں کی سازش کو ان سے بھے کی وجہ قرار دیا اور کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے نام سے بھی سامراجوادی بھیبھیت ہوتے ہیں۔
آئی آر جی سی کے ورشٹھ کمانڈر اور ایرو اسپیس یونٹ کے پرمکھ جنرل علی حاجی زادے کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کا مقصد پرتیرودھ کے مورچے کو نقصان پہنچانا تھا۔ انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کے دوستوں کے جہاد اور ان کی شہادت کے شیرشک سے آیوجت ہونے والے سیمینار کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کو 2 سال کا سمے ہو چکا ہے اور اس اودھی میں امریکی ادھیکاریوں نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بارے میں بہت کچھ کہا اور بہت سے رازوں سے پردہ بھی اٹھایا کہ وہ اس مہانائک کو شہید کرنے سے کون سے لکشیہ حاصل کرنے کے پریاس میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے لیے امریکہ کی آتنکوادی سرکار کا ساتھ دیا وہ کیول ایک ایرانی کمانڈر کو راستے سے ہٹانے کے پریاس میں نہیں تھے بلکہ ان کا مقصد ایران کی اسلامی ویوستھا کو بہت ادھک نقصان پہنچانا تھا۔ جنرل علی حاجی زادہ نے کہا کہ امریکی ادھیکاریوں نے یہ سوچا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے پر ایران کوئی پرتکریا نہیں دکھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ورچسوادی ویوستھا نے اس کارروائی سے پرتیرودھ کے مورچے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کا کارکرم بنایا تھا اور امریکہ کے پورو دھرت راشٹرپتی ٹرمپ نے 7 ٹریلین ڈالر خرچ کیے اور اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ ان پراجیوں کے ذمہ دار شہید جنرل قاسم سلیمانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کا دوسرا مقصد پرتیرودھ کے مورچے کو نقصان پہنچانا تھا۔
نئے سال کے اوسر پر اور عراق سے امریکی سینکوں کے نکلنے کی اودھی گزر جانے کے بعد بغداد میں امریکی دوتاواس کی سرکشا ویوستھا کڑی کر دی گئی ہے۔ شرق نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار پرتیرودھ کرتا گٹوں کی اور سے عراق سے امریکی سینکوں کے نکلنے کی تاریخ گزرنے کے بعد بغداد میں امریکی دوتاواس نے ایئر ڈیفینس سسٹم سیرام کو سکری کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ بڑے پیمانے پر دوتاواس کے آس پاس سرکشا بلوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے عراقی سنسد میں الفتح گٹھ بندھن کے پرمکھ ہادی العامری نے کہا تھا کہ عراق کے سمویدھان میں ودیشی سینکوں کی اپستھتی کی انومتی نہیں دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ودیشی سینکوں کی اپستھتی پڑوسی دیشوں کے لیے خطرہ ہے۔
عراق کی راجدھانی بغداد میں کرودھت پردرشنکاریوں نے امریکی دوتاواس کے پریچتر میں آگ لگا دی۔ سماچار ایجنسی فارس کی رپورٹ کے انوسار پردرشنکاری عراق کے دھوج ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور انہوں نے بغداد کے گرین زون میں استھت امریکی دوتاواس کے پریچتر میں آگ لگا دی۔ سماچار ایجنسی رویٹرز کی رپورٹ کے انوسار امریکی سینکوں دوارا عراق کے سوئم سبھی بل ہشت و شابی کے ٹھکانوں پر ہوائی حملوں کی دوسری ورشگانٹھ پر یہ پردرشن ہوئے تھے۔ امریکی سینکوں نے ہشت و شابی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا جس کے بعد کرودھت پردرشنکاریوں نے امریکی دوتاواس کی ایک چیک پوسٹ پر آگ لگا دی تھی جس کی دوسری ورشگانٹھ پر یہ پردرشن ہوئے۔
ویسٹ بینک میں فلسطینیوں پر اسرائیلی سینکوں کی فائرنگ میں درجنوں فلسطینی گھائل ہو گئے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے انوسار نابلس، الخلیل اور قلقیلیہ سہیت ویسٹ بینک کے انیک کھیتروں میں اسرائیلی سینکوں کے حملوں میں درجنوں فلسطین گھائل ہو گئے۔ اسرائیلی سینکوں نے پردرشنکاریوں پر فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے فائر کیے۔ کچھ دن پہلے بھی ویسٹ بینک کے نابلس پرانت کے برقا کھیتر میں بھی اسرائیلی سینکوں کے حملوں میں کم سے کم 127 فلسطینی گھائل ہوئے تھے۔ گھائلوں میں 5 کو سیدھے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ گھائل ہونے والوں میں زیادہ تر کا سمبندھ فلسطین کے نابلس شہر کے برقا علاقے سے ہے۔
کشمیر میں ویشنو دیوی مندر میں ہونے والی بھگدڑ میں 12 لوگ مارے گئے جبکہ 14 انیہ کے گھائل ہونے کی سوچنا ہے۔ یہ گھٹنا شنیوار کی صبح 2:45 پر ہوئی۔ लोगों ने दावा किया है कि यह घटना कुप्रबंधन की वजह से हुई है, जबकि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आरोपों को खारिज किया है। श्राइन बोर्ड ने कहा कि मौजूद भीड़ को देखते हुए सभी जरूरी उपाय किए गए थे, हर व्यवस्था की गई थी। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि घटना के दौरान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी और वो तुरंत मौके पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तत्काल रिएक्ट किया था, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। दिलबाग सिंह ने कहा कि कुछ युवकों के बीच बहस हुई और फिर धक्का मुक्की होने लगी थी। इस दौरान लोग पीछे हटने लगे और फिर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में जान गंवाने वाले परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम बदलने और इस राज्य को दक्षिणी तिब्बत करार देने पर केंद्र सरकार की चुप्पी की आलोचना की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के इस कदम का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी कुछ दिनों पहले हम 1971 के युद्ध में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसलों की जरूरत होती है, खोखले जुमलों के से जीत नहीं मिलती। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार को कमजोर बताया और प्रधानमंत्री मोदी पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए चीनी खतरों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कब चीन की कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए मजबूत कदम उठाएंगे।
भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों और परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर के साथ पाकिस्तान में 628 भारतीय कैदियों की सूची शेयर की, जिनमें 51 नागरिक और 577 मछुआरे शामिल हैं। ये कदम भारत और पाकिस्तान के बीच 21 मई 2008 को हस्ताक्षर किए गए काउंसलर पहुंच के समझौते की धारा I के अनुसार उठाया गया, जिसके अंतर्गत दोनों देशों को साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक दूसरे की जेलों में कैद कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान करना होता है। याद रहे कि इन कैदियों में गलती से समुद्री सीमा पार करने वाले मछुआरों को सामान्य रूप से सद्भावना दिखाते हुए रिहा भी कर दिया जाता है। बयान में कहा गया है कि इसी तरह भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के साथ 355 पाकिस्तानी कैदियों की सूची शेयर की, जिनमें 282 शहरी और 73 मछुआरे शामिल हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों के बीच 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों की रोकथाम के समझौते, जिसकी 27 जनवरी 1991 को पुष्टि की गई थी कि आर्टिकल 2 के अनुसार पाकिस्तान में परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आधिकारिक रूप से विदेश मंत्रालय में भारतीय हाई कमीशन के प्रतिनिधियों के हवाले की गई।
भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठनों ने शुक्रवार को महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कार्यक्षण की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गोडसे ने देश बचाया और गोडसे अमर रहे जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस विरोध मार्च का नेतृत्व संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के कानूनी सलाहकार कुलभूषण भारद्वाज ने किया। शुक्रवार के मार्च में RSS और भाजपा के पूर्व नेता नरेंद्र सिंह पहाड़ी शामिल थे, जिन्होंने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए पिछले हफ्ते पटौदी के एक स्कूल में क्रिसमस की पूर्व संध्या समारोह को बाधित करने वाले समूह का नेतृत्व किया था। याद रहे कि संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति हरियाणा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महावीर भारद्वाज ने भी विरोध में भाग लिया। उन्होंने हरिद्वार में धर्म संसद में भाग लिया था, जहां कालीचरण सहित कई प्रतिभागियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। अमेरिका ने 2021 के अंत तक इराक से अपने सभी सैनिकों को बाहर निकालने का ऐलान किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
नया साल आरंभ हो चुका है, परंतु इराक से अमेरिका के अति घृणकारी सैनिक अब तक नहीं निकले हैं। इराकी पार्टियों, गुटों और इस देश के लोगों का मानना है कि इस देश में अमेरिका के अति घृणकारी सैनिकों की उपस्थिति इराकी संसद में पारित होने वाले प्रस्ताव के खिलाफ है। इराकी संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक अमेरिकी सैनिकों को इराक से निकल जाना था। अमेरिकी अधिकारियों के बयानों के दृष्टिगत वे इराक से अपने सैनिकों को निकालने के लिए तैयार नहीं हैं। इस आधार पर यह विषय इराकी सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती होगी कि वो समस्त विदेशी सैनिकों को बाहर निकाले और इराकी लोगों को किसी भी रूप में अपने देश में विदेशी सैनिक पसंद नहीं है। इस बात के दृष्टिगत ये विषय इराक की गठित होने वाली नई सरकार में पार्टियों और गुटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर अमेरिकी सैनिकों को अपने देश से निकालने के बारे में इराकी पार्टियां व गुट एकजुट व एकमत नहीं रहे तो अमेरिका इराक में अपनी पकड़ मजबूत करेगा और इराक में अपनी उपस्थिति जारी रखेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका के सेंट्रल कमान सेंटकॉम के प्रमुख ने भी ऐलान किया है कि कोई भी अमेरिकी सैनिक इराक से बाहर नहीं जाएगा और ये सैनिक युद्ध में भाग लेने के बजाय इराकी सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण देंगे। इस बारे में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इराकी लोग अपने देश से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन के इच्छुक हैं, और शुक्रवार से इराकी लोग राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास के निकट जमा होना आरंभ हो गए हैं, और उन्होंने अमेरिकी दूतावास के परिसर में आग लगा दी, जो उनके क्रोध का सूचक है। इस बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इराकी लोग अपने देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी चाहते हैं। बगदाद के ग्रीन जोन में इराकियों की उपस्थिति इसी बात की पुष्टि करती है, जिसमें इराकियों ने अपने देश में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति का विरोध किया। इसी प्रकार से इराकी सूत्रों ने बताया है कि जिकार प्रांत में स्थित अस-सबा नामक ऑयल फील्ड के निकट अमेरिकी सैनिक कारवां पर रॉकेट से हमला किया गया है। दूसरी ओर इराक में अपनी अवैध उपस्थिति की गंभीरता को समझते हुए अमेरिकी सैनिकों ने बगदाद में इस देश के दूतावास के भीतर मिसाइल सिस्टम लगाया है। इसी के साथ अमेरिकी दूतावास के सुरक्षा बलों की संख्या को अधिक बढ़ाया गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इराक में नई सरकार के गठन के साथ ही इस देश की जनता द्वारा नई सरकार से अपने देश से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन की मांग तेज हो जाएगी। इसलिए ये संभावना पाई जाती है कि अपनी मौजूदगी का औचित्य दर्शाने के उद्देश्य से अमेरिकी आतंकवादी गुटों, विशेषकर दाइश को इराक में फिर से सक्रिय करेंगे।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
फिलिस्तीनियों ने अवैध कॉलोनियों के निर्माण और अपनी भूमि से वंचित किए जाने के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किए हैं। پیش ہے ایک رپورٹ قائم رضوی کی زبانی.
فلسطینیوں نے اویدھ کالونیوں کے نرمان اور اپنی بھومی سے ونچت کیے جانے کے ویرودھ میں پشچمی تٹ کے بہت سے کھیتروں میں پردرشن کیے ہیں. یہاں کفر قدوم میں ہم فلسطینیوں کے بیچ گئے. یہاں پر زائونی سینکوں سے پردرشنکاریوں کی جھڑپیں ہوئیں. زائونی سینک کھل کر اویدھ کالونی نرمان کرتاؤں کا سمرتھن کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے حملے بھی. واسطو میں جن پرتیرودھ کو اور بڑھنا چاہیے. جیسا کہ ہم کفر قدوم میں دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کا آندولن ویوہارک روپ میں ہر پرکار کے اویدھ زائونی اتکرمکاریوں کے ورد آرمبھ ہو چکا ہے.
مطلوب ان یحدد الشعب الفلسطینی استراتیجیات.
فلسطینیوں کو اویدھ زائونی شاسن کو پراست کرنے کے لیے سب سے ادھک پربھاوی مارگ کا چین کرنا چاہیے.
متظاہرات الاخرى فی بیتا و
بیتا بیت دجن اور نابلس میں بھی پردرشن آرمبھ ہو چکے ہیں. ان پردرشنوں کا ادیش اویدھ کالونیوں کے نرمان کو روکنا ہے جو فلسطینیوں کی بھومی میں کینسر کی طرح پھیل رہے ہیں. جھڑپوں میں کئی فلسطینی یوا گھائل ہو گئے. ان میں سے کچھ تو گیسوں سے پربھاوت ہوئے جبکہ کچھ پردرشنکاری ربر کی گولیوں سے گھائل ہوئے ہیں. فلسطینی ناگرک ان زائونیوں اور اویدھ کالونی نرمان کرتاؤں کے مقابلے میں پرتیرودھ کر رہے ہیں جو کسی پر بھی دیا نہیں کرتے اور کھیتر کا وناش کرتے جا رہے ہیں. ہم فلسطینی جنتا اور اسلامی راشٹروں کا پرتندھتو کرتے ہوئے ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان کا خون اور ان کا جیون فلسطین کی بھومی کی رکشا سے وشیش ہے. زائونی جس انوپات میں بھی فلسطینیوں کا دمن کر رہے ہیں اسی انوپات میں ان کا پرتیرودھ بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے. فلسطین سے آئی آر آئی بی کے لیے خالد صبرنا کی رپورٹ.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا. بھارت پرشاست کشمیر میں نئے پریسیمن اور وپکشی نیتاؤں کو نظر بند کیے جانے کے خلاف پردرشن ہوئے جنہیں پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہے. بیورا دے رہے ہیں شری نگر سے سپت حسن.
مین سٹریم جماعتوں کے اتحاد گپکار الائنس کے سینڈو کارکنوں نے آج سری نگر میں پولیس قدگن اور رہنماؤں کی خانہ نظر بندی کے باوجود حد بندی کمیشن کی تجویز اور دیگر قوانین کے ساتھ ساتھ حیدرپورہ انکاؤنٹر پر پولیس کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے زوردار احتجاجی مظاہرے کیے. تاہم پولیس نے ان احتجاجی مظاہروں کو طاقت کے بل پر روکا اور ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی. پولیس حکام نے آج الصبح ڈاکٹر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ اور محمد یوسف طاہرگامی سمیت درجن بھر مین سٹریم جماعتوں کے رہنماؤں کو اپنے گھروں میں نظر بند کر رکھا تھا. تاہم نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور دیگر جماعتوں کے سینکڑوں کارکنوں نے سری نگر شہر کے مختلف جگہوں سے احتجاجی جلوس اور مظاہرے کرنے کی بھرپور کوشش کی جو پولیس نے ناکام بنا دی.
ہم اس کو کنڈیمن کرتے ہیں ریاستی ایڈمنسٹریشن کے اس غیر جمہوری اقدام کا، کیونکہ جمہوریت میں ہر ایک کو حق ہے اپنی بات کہنے کا، لیکن یہ جو زور زبردستی ہے یہ چلنے والی نہیں ہے.
واضح ہے حد بندی کمیشن نے جو تجویز پیش کی ہے اس میں جموں صوبے کے لیے 6 اور کشمیر صوبے کے لیے فقط ایک اسمبلی حلقے کا اضافہ کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ درجہ فہرست ذاتوں کے لیے 15 نشستوں کو محفوظ کیا گیا ہے. دوسری طرف پولیس کی ایس آئی ٹی نے حیدرپورہ انکاؤنٹر کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی پیش کی ہے جس میں پولیس کو بری ذمہ قرار دیا گیا، جس پر گپکار اتحاد کافی برہم ہوا اور اس نے کہا ہے کہ جب تک انہیں اپنا حق حاصل نہیں ہوگا تب تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور اسی کی ایک کڑی کے تحت آج گپکار اتحاد نے احتجاجی مظاہرے کرنے کا پروگرام رکھا تھا جو پولیس نے ناکام بنا دیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، تاہم گپکار اتحاد نے اسے جمہوری قدروں کی پامالی سے تعبیر کیا.
سبتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر.
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی. ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब पेश है एक विशेष कार्यक्रम और उसके बाद नए वर्ष के अवसर पर आप सुनेंगे एक दूसरा विशेष कार्यक्रम।
श्रोतागण, इस्लामी गणतंत्र ईरान के विश्व विख्यात कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, 3 जनवरी सन 2020 की सुबह पूरी दुनिया एक दर्दनाक खबर सुनकर हैरान रह गई। धीरे धीरे ये खबर ईरान के दूसरे शहरों में भी फैलती चली गई। देखते ही देखते पूरे ईरान का वातावरण शोकाकुल हो गया और हर आंख नम नजर आ रही थी। हर दिल दुख से फटा जा रहा था। जवान दहाड़ मार कर रो रहे थे और हर तरफ से चीख व पुकारों की आवाजें आ रही थीं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इस दुख दर्द में केवल ईरानी ही अकेले नहीं थे और इस नश्वर संसार को छोड़ने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो केवल ईरानियों में ही लोकप्रिय था, बल्कि वो क्षेत्र की जनता के दिलों पर राज करने वाली एक महान हस्ती थी।
फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया से लेकर अफगानिस्तान, नाइजीरिया, यमन और बहरन तक इस हस्ती के चर्चे थे। यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय लोग भी इस महान ईरानी हस्ती पर बेहतर भविष्य की आस लगाए बैठे थे। यह इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह के हाथों का पाला हुआ एक स्वयंसेवी और एक नेक शिष्य था। वह उस कारवां से बिछड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति था जो इमाम खुमैनी के एक ही इशारे पर पूरी दुनिया को इधर से उधर कर देता और दुनिया के सारे समीकरणों को बदल कर रख देता था। वर्षों बाद तक वह इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते रहे। यह महान आकांक्षा न केवल एक राजनीतिक आकांक्षा और उमंग नहीं थी, न है और नहीं रहेगी। यह उमंग और आकांक्षा दुनिया से साम्राज्यवादियों के हथकंडों और उनके षड्यंत्रों को नकारने के लिए, दुनिया के कमजोर वर्गों और मुसलमानों को जोड़ने और उनमें एकता पैदा करने का रास्ता है।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने बारंबार दुनिया के कमज़ोर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और उनके बीच एकता पैदा करने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने दुनिया के कमज़ोर वर्ग को एक ध्वज के नीचे लाने का आह्वान भी किया। वे दुनिया के कमज़ोर वर्गों और मुसलमानों की कामयाबी का राज पवित्र कुरान का अनुसरण, आपसी एकता और विलायत फ़कीह का आज्ञा पालन मानते थे। स्वर्गीय इमाम खुमैनी के बाद इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई जैसे तत्वदर्शी और शक्तिशाली व ज्ञानी नेतृत्व और अपनी जान हथेली पर रखने वाले जनरल कासिम सुलेमानी जैसे सैनिक की जगह से उमंग और आकांक्षा का ये ध्वज पूरी दुनिया में यथावत लहरा रहा है। ऐसा सैनिक जिसने अपनी सारी जिंदगी इस महान लक्ष्य और उमंग व आकांक्षा को पूरा करने में लगा दी, बल्कि उसकी शहादत भी इस महान लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते में ही हुई, क्योंकि वो इसी लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे थे।
जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों की शहादत ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया और जिस चीज की चाहत उनके दिल में हमेशा रहती थी उनको वह चीज मिल गई। अहवाज, तेहरान, मशहद, कुम और किरमान जैसे ईरान के छोटे बड़े सभी शहरों के लोगों ने नम आंखों से अपने बहादुर और साहसी जनरल को विदा दी जो इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह की अंतिम शव यात्रा के बाद नजर आता है। इस दुख दर्द के साथ लोगों में हत्यारों के प्रति घृणा और नफरत भी झलक रही थी, क्योंकि जनरल सुलेमानी के हत्यारे वही साम्राज्यवादी थे जिनके खिलाफ इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह उठ खड़े हुए थे।
इसी के साथ ईरानी जनता ने इस दर्दनाक अवसर पर बल दिया कि जनरल कासिम सुलेमानी की उमंगों और लक्ष्यों को व्यावहारिक करने के लिए जो वास्तव में क्रांति की ही उमंग और आकांक्षा है, अंतिम सांस तक वे डटे रहेंगे, दुश्मनों के षड्यंत्रों को विफल बनाएंगे। बहुत से ईरानी बच्चों ने अपने हीरो को पहचाना और उनको अपने जीवन का आइडियल करार दिया। वास्तव में भविष्य में इनमें से हर एक कासिम सुलेमानी बनेगा। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत ने उनके प्रेमियों के हौसले नहीं तोड़े, बल्कि उनको लक्ष्यों तक पहुंचने में उनके इरादों और संकल्पों को और भी मजबूत कर दिया।
बहुत से इस्लामी आतंकी, गैर इस्लामी देश और दुनिया के कमजोर वर्ग के लोग जनरल कासिम सुलेमानी की उमंगों पर आशा लगाए बैठे थे और सभी लोगों की भावनाएं एक जैसी ही थीं। उनकी भावनाएं और एहसास साम्राज्यवादियों और उनके पिट्ठुओं से नफरत के अलावा कुछ और नहीं था, और साथ ही न्याय, इंसाफ और मानवता को पुनर्जीवित करने की आस थी। फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक, गजा, यमन, बहरन और अफगानिस्तान जैसे देशों की जनता भी, जिन्होंने वर्षों तक जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों को अपने बीच पाया था, उनको अपना एकमात्र आसरा समझा। जब सारे आसरों ने साथ छोड़ दिया, तब भी ईरानी जनता के साथ इस दुख की घड़ी में साथ है।
दोस्तों, इन सब के बावजूद केवल यही लोग नहीं थे जो ईरानी जनता के साथ इस बड़े दुख को सहन कर रहे थे, बल्कि भारत, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, नाइजीरिया, रूस, चीन, बेलारूस, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की जनता भी इस तरह की ही भावनाएं रखती थी। ये वही एकता थी जिसको व्यावहारिक बनाने के लिए जनरल कासिम सुलेमानी ने जीवन को वक्फ कर दिया था। इस एकता का संबंध किसी भी देश या राजनेता से नहीं है, ये स्वतंत्रता प्रेमियों के दिलों का गठजोड़ है जो अपने खून, जान और दिल से एक हो चुके हैं। ये चीज राजनीतिक समझौते से ज्यादा ताकतवर है, और ये ठीक वही चीज है जिसको विश्व साम्राज्यवादी तबाह कर देना चाहते हैं।
दिलों की जागरूकता साम्राज्यवादियों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी रुकावट होती है। वह बड़ी रुकावट जिसे नाकाम बनाने के लिए साम्राज्यवादियों ने बहुत योजनाएं बनाई और बहुत प्रयास किए। उन्होंने बड़े देशों का विभाजन कर दिया और राष्ट्रीय, जातीय और धार्मिक मतभेदों को हवा दी, ताकि दुनिया के लोग सुख चैन से न बैठ सके। उनका इरादा इन अशांतियों से अपने हित साधना था और हालात से फायदा उठाना है। साम्राज्यवादी शक्तियां विभिन्न बहानों से आंतरिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की आग भड़काते हैं, ताकि उनके हथियारों के कारखानों में रौनक लौट आए और खरीदार बढ़ें।
जब दुनिया में जंग का माहौल रहेगा और लोग एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे, तो ये साम्राज्यवादी देश आसानी से क्षेत्र के वित्तीय और प्राकृतिक स्रोतों को लूटते रहेंगे। मध्य पूर्व के हालात इसका मुख्य उदाहरण है। मध्य पूर्व में अराजकता के जो हालात बन गए हैं, उसमें साम्राज्यवादी शक्तियां अपना फायदा उठाने में तनिक भी नहीं हिचकिचा रही हैं। जब शक्तिशाली सरकारें ना हों या ऐसी सरकारें हों जो साम्राज्यवादियों पर निर्भर हों, तो वे आसानी से अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। उस लक्ष्य में मानवता और न्याय का कोई स्थान नहीं होता, और वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपने लक्ष्यों को साधने के प्रयास करते हैं।
साम्राज्यवादियों ने अपने लक्ष्य साधने के लिए वर्षों प्रयास किया, और इसी के अंतर्गत उन्होंने अलकायदा, दाइश, नुसरा फ्रंट जैसे आतंकवादी गुट बनाए और मध्य पूर्व के क्षेत्रों को अशांति से भर दिया। इन गुटों को बनाने के बाद साम्राज्यवादी एक अन्य लक्ष्य साधने के प्रयास में थे, और वह इस्लाम और मुसलमानों की छवि खराब करना थी, क्योंकि साम्राज्यवादियों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट और उनका सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम ही है। IRGC के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी ने एक के बाद एक साम्राज्यवादियों के सारे षड्यंत्रों को विफल बना दिया।
उन्होंने जंग के अग्रिम मोर्चे पर आतंकवादी गुटों का मुकाबला किया, उनको तहस नहस करके रख दिया। जब साम्राज्यवादियों ने सीरिया के विभाजन की योजना बनाई और इस देश में अशांति तथा अराजकता का माहौल गर्म कर दिया तथा आतंकवादी बड़ी ही क्रूरता से महिलाओं, बच्चों, जवानों और बूढ़ों को तलवारों से काट रहे थे और सरकार तथा सरकारी सेना में उनके मुकाबले की ताकत नहीं थी, उस समय जनरल कासिम सुलेमानी ने अपने कुछ साथियों के साथ सारे के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। बहुत ही कम अवधि में जंग के मैदान का चेहरा उन्होंने बदल दिया। उनकी और उनके साथियों की कोशिशों की वजह से ही सीरिया की जनता को शांति और सुरक्षा का उपहार मिला।
विश्व साम्राज्यवाद सीरिया में फंस गया और उसके बाद उसने अपने आतंकवादी गुटों को इराक रवाना करना शुरू कर दिया और फिर उनके समर्थन के लिए इराक में सामूहिक विनाश के हथियारों का बहाना बनाकर इस देश पर चढ़ाई कर दी। यह साम्राज्यवादियों की शैली है जिसे वह आतंकवाद और तनाव से संघर्ष के नाम पर नई जंग शुरू करता है और आतंकवाद का समर्थन करता है। इराक पर अमेरिका के नियंत्रण के जमाने में अमेरिका और उसके घटक दल के सैनिक इराक की सड़कों पर टैंक द्वारा परेड करते थे और जो और जैसा दिल में आता था वैसे अपराध अंजाम देते थे। इतिहास गवाह है कि अमेरिका और उसके घटकों ने इराक में बहुत से अमानवीय अपराध अंजाम दिए हैं।
अमेरिका और उसके घटकों तथा आतंकवादियों की साजिशों के मुकाबले के लिए जनरल कासिम सुलेमानी अकेले ही निकल पड़े। उन्होंने जंग के मैदान से लेकर मीडिया के जंग के मैदान तक दुश्मनों को धूल चटा दी। इस तरह की हार दुश्मनों के लिए बहुत भारी थी और उनमें दोबारा मैदान में खड़े होने की ताकत खत्म हो चुकी थी। यही कारण है कि ट्रंप नामक एक मूर्ख और पागल शख्स ने इस महानायक को रास्ते से हटाने का आदेश दे दिया। उनको पता ही नहीं था कि वो एक सुलेमानी को मारेंगे, लेकिन जनरल सुलेमानी ने पूरी दुनिया में सैकड़ों सुलेमानी बना दिए हैं।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
दोस्तों, आप सबको नए वर्ष की बधाई देते हैं और इस संबंध में कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, नए साल के संबंध में विशेष कार्यक्रम के आरंभ करने से पहले हम एक बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं और ये बात ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि नया साल और क्रिसमस एक ही हैं, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्रिसमस एक धार्मिक त्यौहार है जबकि नया साल ईस्वी वर्ष के आरंभ होने पर मनाया जाता है। क्रिसमस को हर साल 25 दिसंबर को ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस के संबंध में मनाया जाता है। क्रिसमस पूरे विश्व में मनाया जाता है। जिन देशों में ईसाई बहुसंख्यक हैं वहां पर ये अधिक शोर शराबे और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
क्रिसमस के सातवें दिन अर्थात 1 जनवरी को नए साल का उत्सव मनाया जाता है। इस बारे में लंबी बहस की गई है कि क्योंकि 1 जनवरी को नए साल के रूप में चुना गया है। कहते हैं कि इसकी जड़ें प्राचीन काल के रोम वासियों के जीवन से जुड़ी हैं। विश्व के बहुत से देशों विशेषकर यूरोपीय देशों में क्रिसमस पर कई दिनों की छुट्टी की जाती है। क्रिसमस की यही छुट्टियां नए साल की छुट्टियों से मिल जाती हैं। हम समझते हैं कि इन बातों से क्रिसमस और नए साल के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है।
सामान्यतः पूरी दुनिया में ईसाई समुदाय के लोग नए साल को बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। वे लोग अपने घरों को सजाते हैं, घरों में रोशनी की जाती है, अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं। इस दिन से विशेष मिठाइयाँ और केक तैयार किए जाते हैं। इसमें बहुत अधिक पैसे खर्च किए जाते हैं। कितना अच्छा होता है कि इस प्रकार के उत्सव में जो पैसा खर्च किया जाता है उसको समाज के उन लोगों पर खर्च किया जाता जो वंचित हैं और निर्धनता में जीवन गुजार रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसी बीमारी से जूझ रहे हों जिसके इलाज के लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत हो।
हम ये भी जानते हैं कि इस प्रकार के लोग हमारे इर्द गिर्द भी होंगे। हमको उन्हें ढूंढने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि पूरी दुनिया में फैली हुई गरीबी को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने इर्द गिर्द फैली गरीबी को किसी सीमा तक अवश्य कम कर सकते हैं। ईसाई धर्म सहित सारे धर्मों में दूसरों की सहायता, दूसरों से प्रेम, वंचितों का साथ देना, मानवता का सम्मान, न्याय स्थापित करना और इसी प्रकार की बातें कही गई हैं। आइए हम संकल्प करें कि इन विशेषताओं तक पहुंचने के लिए हम संघर्ष करेंगे। ये काम करने के लिए हमारा ईसाई होना जरूरी नहीं है, बल्कि हर धर्म और हर समुदाय के लोग ऐसा कर सकते हैं और उनको करना चाहिए।
दोस्तों, मुसलमानों और ईसाइयों में बहुत सी ऐतिहासिक समानताएं पाई जाती हैं। इन ऐतिहासिक समानताओं में से एक उस काल की है जब मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सार्वजनिक रूप से स्वयं को ईश्वरीय दूत घोषित नहीं किया था। ये उनकी जवानी का काल था। उस जमाने में वे अपने चाचा के साथ व्यापारिक यात्राओं पर जाया करते थे। उसी दौरान ईसाइयों के अपने काल के एक बहुत बड़े धर्मगुरु बुहैरा ने एक जवान को देखा जिसके भीतर उसे ईश्वरीय दूत होने की निशानियां दिखाई दीं। ईसाइयों के इस धर्मगुरु ने इन्हीं निशानियों को देखते हुए उस नौजवान के चाचा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद कहा था कि इस युवा को आप सुरक्षित ले जाइए क्योंकि दुश्मन इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप वर्तमान समय में मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य धार्मिक एकता का नमूना और प्रतिफल देखना चाहते हैं तो ईरान इराक युद्ध में देख सकते हैं। इराक ने ईरान पर जो 8 वर्षीय युद्ध थोपा था उसमें ईरान की ओर से लड़ने वाले सैकड़ों ईसाई भी शहीद हुए हैं। ईरान में रहने वाले ईसाई इस देश को अपना देश और अपनी मातृभूमि समझते हैं और उसकी रक्षा को अपनी रक्षा समझते हैं। इसी आस्था के साथ इराक की ओर से ईरान पर थोपी गई जंग के दौरान सैकड़ों ईरानी ईसाई जवान भी शहीद हुए। ईरानी अधिकारी और जिम्मेदार सदैव इन कुर्बानियों को याद करते और उन्हें महत्व देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आज देश में जो सुरक्षा है वो जंग में शहीद होने वाले जवानों के पावन लहू का उपहार है।
यही नहीं, आप फिलिस्तीन में भी मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य समानता का नमूना देख सकते हैं। ज़ायोनी शासन 70 वर्षों से अधिक समय से फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है। इसराइल के अत्याचार फिलिस्तीनी मुसलमानों तक सीमित नहीं है, उसके इस अत्याचार में बहुत से ईसाई भी शामिल हैं। इसराइल ने बहुत से ईसाइयों को भी बेघर कर दिया है। फिलिस्तीनी मुसलमान और ईसाई दोनों अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए इसराइल से संघर्ष कर रहे हैं। ایک عیسائی کا نام ایڈورڈ سعید ہے جس نے اپنا پورا جیون مظلوم فلسطینیوں کی آواز کو وشواسیوں تک پہنچانے کے لیے سمرپت کر دیا ہے۔ وہ 15 سال کی عمر سے امریکہ میں رہتا ہے اور ہمیشہ وہ سوئم کا پرچے ایک فلسطینی کے روپ میں کراتا ہے۔ اس نے کتاب بھی لکھی ہے جس میں فلسطینیوں کے بے گھر ہونے کی گھٹناؤں کا الیکھ ہے۔ اسی پرکار ایڈورڈ سعید کا ماننا ہے کہ فلسطین میں فلسطینی لوگوں پر آدھارت ایک سواتنت سرکار کا گٹھن ہونا چاہیے۔
دوستو، حالیہ ورشوں میں کچھ گھٹنائیں گھٹی ہیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے ایک دوسرے سے نکٹ آنے کا کارن بنی ہیں۔ آتنکوادی گٹوں وشیش کر داعش نے جو تانڈو مچا رکھا تھا، اس کے مقابلے کے لیے ایرانی، عراقی، لبنانی اور سیریائی سب ساتھ تھے۔ عراق اور سیریا میں عیسائی سمودائے اور اس کے دھارمک ستھل بھی داعش کے تانڈو سے سرکشت نہیں تھے، پرنتو مسلمان سنگھرش کرتاؤں نے عراق میں عیسائی سمودائے کو آتنکوادی گٹ داعش کے چنگل سے مکتی دلائی۔ عیسائی اور ازدی مہلاؤں اور لڑکیوں اور بچوں کو داعش سے بچایا۔
وشو سامراج نے آتنکوادی گٹھوں کا گٹھن کیا اور ان کا پریوگ ہتھ کنڈے کے روپ میں کیا اور کر رہے ہیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی چھوی ایک بار پھر خراب کریں۔ پرنتو ایران، لبنان، عراق اور سیریا کے نشٹھاوان مسلمان سنگھرش کرتاؤں نے اپنے سنگھرش سے دشمنوں کے شڈیانتوں پر پانی پھیر دیا۔
مسلمانوں اور عیسائیوں کے مدھیے ایک سنیکت بندو مہا مکتی داتا کی پرتیکشا ہے۔ عیسائی بھی اس مہان ہستی کی پرتیکشا میں ہیں جو انیائے و اتیاچار کا انت کر کے پوری دنیا کو نیائے سے بھر دے گا اور ہر طرف شانتی ہی شانتی ہوگی۔ یہاں پر ایک بندو کا الیکھ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ نیائے کے پکش دھر ہیں اور نیائے ستھاپت کرنے کے لیے پریاس بھی کرتے ہیں، پرنتو انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ جب تک سب کے ساتھ نیائے پر آدھارت برتاؤ و ویوہار نہیں کیا جائے گا تب تک شانتی ستھاپت نہیں ہو سکتی۔ یعنی شانتی کا آدھار نیائے ہے۔ جہاں بھی انیائے سے کام لیا جائے گا وہاں شانتی ستھاپت نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ واسطو میں شانتی ستھاپت کرنے کے لیے پریاس کر رہے ہیں، انہیں اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ان کے پریاس کا آدھار نیائے ہونا چاہیے۔ دوسرے شبدوں میں، ان کی کتھنی اور کرنی میں بھی نیائے ہونا چاہیے، ورنہ شانتی کے لیے کیے جانے والے پریاس کبھی بھی صحیح ارتھوں میں سفل نہیں ہوں گے۔
جو لوگ شانتی و نیائے کے لیے مہا مکتی داتا کے پرتیکشا میں ہیں، ان کے ویوہار سے دوسروں کو لگنا چاہیے کہ وہ کسی کی پرتیکشا میں ہیں۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ انیائے سے کام لیتا ہے اور وہ مہا مکتی داتا امام مہدی علیہ السلام کا واسطوک پرتیکشک نہیں ہے۔ جو بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ مہا مکتی داتا کا انتظار کر رہا ہے، تو اسے دنیا سے برائیوں کو ختم کرنے اور اچھائیوں کے پرچار پرسار کے لیے پریاس کرنا چاہیے۔ یہی نہیں، جو انسان واسطو میں مہا مکتی داتا کے پرتیکشا کرنے والا بننا چاہتا ہے، اسے دوسروں کا سدھار کرنے سے پہلے سوئم کا سدھار کرنا چاہیے۔ جو انسان اپنا سدھار کیے بنا دوسروں کے سدھار کے لیے پریاس کرتا رہتا ہے، اس کی باتیں زیادہ دوسروں پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ دوسرے شبدوں میں، زبان سے نکلی باتیں کان تک ہی پہنچتی ہیں۔
یہاں ایک بندو کا الیکھ کرتے چلیں، اور وہ بندو یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان، عیسائی اور دوسرے سمودائے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہیں، تو ان کے مدھے سمان بندوؤں پر بل دیا جانا چاہیے۔ جیسے عیسائیوں اور مسلمانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دونوں کے دھرم آسمانی ہیں، یعنی دونوں ایک ہی مہان ایشور کو ماننے والے ہیں۔ پیغمبر اسلام اور حضرت عیسیٰ دونوں ایشوریہ دوت ہیں۔ دونوں انیائے کے ورودھی تھے، دونوں دین دکھیوں کی سیوا پر بل دیتے تھے،
दोनों ईश्वरीय दूत लोगों से सदैव सच बोलने का आह्वान करते थे। पैगंबर इस्लाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को हर प्रकार के गलत कार्य से रोकते थे। दोनों मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दोनों लोगों के साथ नम्र व सुशील व्यवहार करते थे। कितनी अजीब बात है कि बहुत से लोग अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों की उपासना करते हैं, जबकि महान ईश्वर ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है और इंसान अपने पालनहार और रचयिता की उपासना करने के बजाय अपनी ही रचना की उपासना करता और उसके सामने सिर झुकाता है, जबकि निर्जीव व बेजान मूर्तियां न तो किसी प्रकार का फ़ायदा पहुंचा सकती है न ही नुकसान। और वास्तविक सच्चाई यह है कि हर चीज़ का रचयिता अपनी रचना से श्रेष्ठ व बेहतर होता है।
बहरहाल सर्वसमर्थ व महान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वास्तविक अर्थों में इंतजार करने वाला करार दे और नए साल को सबके लिए मंगलमय वर्ष करार दे। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता का कहना है कि शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के खून की बरकत से आज प्रतिरोध का मोर्चा ज्यादा आशान्वित है। ईरानी कमांडर का कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करने का मकसद प्रतिरोध को कमजोर करना था। अरुणाचल मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है और भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया है। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा यह प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।